तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से श्लोक क्रमांक 11 है और अध्याय है 15 पुरुषोत्तम योग। मेरे पीछे बोलिए, यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यतन्तः प्रयास करते हुए योगिनः अध्यात्मवादी च भी एनं इसे पश्यन्ति देख सकते हैं आत्मनि अपने में अवस्थितं स्थित यतन्तः प्रयास करते हुए अपि यद्यपि अकृतात्मनः आत्म साक्षात्कार में विहीन न नहीं एनम इसे पश्यन्ति देखते हैं अचेतसः अविकसित मनो वाले अज्ञानी। ठीक है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया है कि मूर्ख समझ नहीं पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग रहे हैं और प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर वो किस प्रकार से इस जगत में भोग कर रहे हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वो देख पाता है। तो अब यहाँ इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि जो लोग प्रयत्नशील हैं, जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भगवद गीता सुनते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, वह देख पाते हैं कि किस प्रकार से जीव शरीर त्याग कर रहा है, मर नहीं रहा है, शरीर त्याग कर रहा है। जैसे इस समय आप लोग अपना घर छोड़ करके, घर त्याग करके कुछ समय के लिए इस मंदिर में बैठे हैं, उसके बाद एक दो घंटे के बाद या सवा घंटे के बाद ये स्थान त्याग करके वापस घर चले जाएंगे या कहीं और स्थान पर चले जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप समाप्त हो जाएंगे। तो अभी हमें मालूम चला कि कल शाम को कोई व्यक्ति मर गए, तो बताइए वो मर गए कि शरीर त्यागा, समझ रहे हैं? तो घर वाले क्या क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी मर गए, मर गए का अर्थ है समाप्त हो गए। तो अब आप लोग क्यों देख पा रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और आप लोग भगवान से सुने हैं भगवद गीता के माध्यम से। जैसे मेरे पिताजी मर गए हैं, वो कहीं और चले गए, कहीं और चले गए हैं, और मेरी बहन और मेरी जो क्या कहते हैं जो कजिन है, वो सोचती है तुम्हारी तो बातें समझ में नहीं आती। अब देखो, मेरे मामा जी ने बोला कि मतलब मैं उनको फोन किया कि आपके पिताजी नहीं मतलब मर गए, हमने कहा मर नहीं गए, कहीं मतलब वो अभी नहीं यहाँ पे नहीं रहे हैं, कहीं और चले गए। तो ये सब बातें हैं जो उनकी मामा जी की लड़की सुन रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, कहते आप लोगों की बातें मेरे को समझ में नहीं आती। तब देख रहे हैं अंतर, क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं, आत्मा के तत्व को समझते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे जो तथाकथित पिता थे, क्योंकि पिता तो थे नहीं, आत्मा के पिता नहीं होता है, केवल परम पिता कृष्ण है, लेकिन जो इस जीवन में मेरे पिता रहे वो मरे नहीं है, वो किसी और स्थान पर चले गए अपने कर्मों के अनुसार, और जो हाँ अपने जो कर्मों के अनुसार भगवान की तत्वाधान में। समझ में आ गया? तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देख पा रहा है वो क्यों देख पाएगा, क्योंकि वो प्रयत्नशील है। किस में प्रयत्नशील है? भगवान की सेवा में। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे देखिए, अगर आपकी कार खराब हो जाती है तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरी कार खराब हो गई, देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कार क्यों खराब हुई। तो जो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिशियन है सॉरी जो मैकेनिक है, वो ट्रेंड है ज्ञान के द्वारा देखने में कि कार क्यों खराब हुई। दोनों के देखने में अंतर है कि नहीं? तो उसी प्रकार से घटना एक ही है, कैसे जीव इस जगत का भोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फल खा रहा है, आलू वेजिटेरियन चीजें खा रहा है, तो क्या वो सत्वगुण का संग कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, आप समझ पा रहे हैं, सत्वगुण का संग कर रहा है। कोई बहुत चाट पकौड़ी खा रहा है और बहुत मिर्च मसाले की वस्तु में खा रहा है, तो क्या वो रजोगुण का संग कर रहा है कि नहीं? और कोई मांस मच्छी खा रहा है, वो तमोगुण का संग कर रहा है कि नहीं? अब जो व्यक्ति ज्ञान में ट्रेंड है, भगवद गीता के ज्ञान में ट्रेंड है, वो समझ रहा है कि ये जीव सोच रहा है कि मैं मुक्त हूं, बोलते हैं ना, मैं अपने मन के हिसाब से चलता हूं। अब आप ये बताइए कि अगर वो अपने मन के हिसाब से चल रहा है तो क्या वो स्वतंत्र है? क्यों? क्योंकि उसका मन किसके द्वारा नियंत्रित है? हाँ, नहीं, माया के द्वारा, यस, गुणों के द्वारा। जो तमोगुणी व्यक्ति है उस पे गुण जो है उसके मन पे कार्य करते हैं, कहते मांस खाओ। जो सत्वगुणी व्यक्ति कहेगा तुम, वो उसको कहेंगे तुम जाके फल खाओ। और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके गुण जो है उसको प्रेरित करेंगे कि तुम जाकर के पकौड़े खाओ या सारी चीजें खाओ। तो आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझ पाता है कि नहीं, ये सब गुणों के प्रभाव में हो रहा है। जैसे मैं भी इंडोनेशिया गया था तो मैंने देखा सभी लोग बड़े अच्छे हैं वहां पे, तो उन लोगों को कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, उनको नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि सब कुछ वहां पे प्राकृतिक है, इसलिए सत्वगुण का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसी कारण से लोग बड़े सत्वगुणी रहते हैं, अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिव्य हो जाते। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? जहां लोग शराब के स्थल पे होते हैं वहां समझ सकते हैं वहां पे तमोगुण का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी प्रकार से जहां मेले लगते हैं वहां पे रजोगुण का बहुत प्रभाव है। तो ये व्यक्ति कौन देख पा रहा है? उसी घटना को एक सामान्य व्यक्ति देख पा रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवत गीता में ट्रेनिंग प्राप्त करी है वो ज्ञान के चक्षु से देख पा रहा है। तो यहां बात यह आ रही है, श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं जो अकृतात्मना है, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई हैं, वो देखने के बाद भी समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति बोल रहा है जैसे कि मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, मेरे कान है, तो किसके हैं? शरीर के हैं और हमारे तो नहीं है, हम तो उससे अलग है। किसी के हाथ कटा हुआ आप देखते, मान लो इतना पूरा हाथ कटा हुआ है, तब भी आप उसको पूरा वही व्यक्ति मानते हैं। मेरे बाबा जी का बाया हाथ यहां से कटा हुआ था तो हम सोचते थे कि 10-20% मेरे बाबा जी कम हो गए, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। तो अद्भुत बात यह है कि हम लोग देखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते, बात गीता में बोलते हैं भगवान। तो इसी चीज को भगवान बोल रहे हैं, कौन देख पाएगा जो तप कर रहा है? भगवद गीता की बात क्यों समझ नहीं पाते? क्यों नहीं समझ पाते हैं? अकृतात्मना, क्योंकि अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए नहीं, इंद्र शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। ठीक है, हम पहले श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को देखते हैं, फिर प्रभुपाद की टीका को हम देखेंगे। उसमें कहते हैं पहली चीज भगवान ये बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को देखना कि किस प्रकार से जीव इस शरीर में रह करके प्रकृति का भोग कर रहा है, व्यक्ति को ज्ञान में ट्रेंड होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? अगर कोई व्यक्ति जीवात्मा के तत्व को समझना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रभु जी का नाम भूल गया एक सेकंड के लिए, हाँ, प्रतुल प्रभु, क्या देख क्या पढ़ना करना पड़ेगा उसको? उसकी ट्रेनिंग ज्ञान में होनी चाहिए, भगवद गीता के ज्ञान में। फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं समझ में आएगा। और इसी चीज को भगवान, जैसे मैंने रेड कर दिया था, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, पिछले वाले श्लोक में बताया गया था। अब वो बोल रहे हैं कि जो आत्मा है उसको देख पाना मुश्किल होता है। हम लोग हर बार रोज भी सुने कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन उसकी अनुभूति करना मुश्किल होता है, फिर वापस हम देह की चेतना में आ जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं यतन तो योगिनश्चयनम, उसको समझा रहे हैं कि जो यतन कर रहा है, यतन समझते हैं शब्द, हिंदी समझते हैं यत्न, प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है? श्रवण। क्या आप लोग यहां पे बैठने का प्रयास नहीं कर रहे? भले ही समझ में कुछ नहीं आ रहा हो या कुछ कुछ समझ में आ रहा हो, बोर लग रहा हो या कुछ भी हो, लेकिन आप बैठे हैं, यत्न करके सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग यत्न करके जप कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति नवधा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में यत्न करके लगा रहता है, उसकी चेतना साफ हो जाती है, वो समझ पाता है। ये समझ में आ गया शब्द का अर्थ? यतन तो योगिनश्चयनम, योगी मतलब जो अपनी इंद्रियों को जोड़ रहा है, युंज कर रहा है कृष्ण के साथ, और यतन मतलब यत्न से लगा पड़ा है, मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी यत्न से लगा पड़ा है, बार बार श्रवण कर रहा है, बार बार भगवान का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तब वो समझ पाता है आत्मा का तत्व भगवान के संबंध में। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यतन तो योगिनश्चयनम का मतलब क्या है? चलिए, कोई जो अपने इंद्रियों को लगा रहा है, बार बार यत्न करके लगा रहा है, एनम इस बात को समझ पाता है, एनम का मतलब है इस बात को समझ पाता है, और अन्यथा नहीं समझ पाता। देखिए, जैसे अभी आप लोगों को कुछ कष्ट अनुभव हो रहा होगा समझने में, लेकिन अगर आप हरि नाम करते रहे, ये हमको भी होता था, समाज में नहीं आता था शुरुआत में, लेकिन अगर आप हरि नाम करते रहे, अच्छे से करते रहे और बार बार श्रवण करते रहे, तो ये बातें क्लिक करने लग जाती, क्लिक मतलब समझते हैं, समझ में आने लग जाते। जैसे मेरे एक अंकल हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो जब मुझे बताना चालू करते कभी करते तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं पहली बात तो समझना नहीं चाहता और मैं उसमें कुछ प्रयासरत भी नहीं हूँ। मैं हमेशा एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग गाँव में बैठे हैं, अब मैं आप लोगों को थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बताने लग जाऊँ तो आप लोग कहेंगे हाँ क्या बात हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना उसके बारे में सुना है ना पढ़ा है। तो लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे सुनेंगे और उसके बाद चर्चा होगी तो समझ में आ जाएगा ना। तो हमने आज इतना सीख रहे हैं दो शब्दों को, यदंतो योगिनश्चैनम, मतलब इस तत्व को कि जीव कैसे इस जगत में दुख भोग रहा है प्रकृति के गुणों के अधीन, योगी जन समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं जिनका टीका में कहते हैं अकृतात्मनः, यानी जिनका हृदय अशुद्ध है और जिन्होंने विवेक डेवलप नहीं किया, विवेक समझते हैं, जिनकी यहां पर शब्द आया है अचेतसः, अचेतसः मतलब जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है। विवेक का अर्थ समझते हैं क्या आप लोग, सही और गलत का ध्यान का शक्ति। तो जिन लोगों का विवेक इस प्रकार से उदित नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अकृतात्मना है। अकृतात्मना का मतलब उन्हें कोई सुकृति नहीं किया है, उन्हें कोई भगवान की भक्ति नहीं किया है, इस कारण से उनकी चेतना अचेतस है, उनकी चेतना जो है वह अशुद्ध है, उनका मन गंदा है। सीधी सीधी बात, उनका मन गंदा होने के कारण बोलने के बाद भी सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, अपने मन को शुद्ध करे, तब वो इस प्रकार से देख पाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मा को समझना मुश्किल है। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि मुश्किल क्यों है, क्योंकि लोग का हृदय जो है वो शुद्ध नहीं है। देखिए अभी भी कठिनाई हो रही है ना समझने में कठिनाई हो रही है, क्यों, पहली बात तो है कि पहली बार ज्ञान सुन रहे हैं और दूसरी बात यह है कि हृदय में थोड़ा अशुद्धि है। तो हृदय शुद्ध होगा जब हरि नाम के जप से, श्रवण करने से, फिर हम समझ पाएंगे। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं, आप आगे आ जाओ। अच्छा ठीक है, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में पहले इस लाइन को समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि भारत में कितने सारे तथाकथित संत साधु समाज है और बहुत बार वह अपने चेलों को भारतीयता के लेवल पे ले आते हैं, समझ रहे हैं ना, हम लोग भारत के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, वो चाइना से हैं, वो हम देश सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति, वो साधु एक इंच भी, वो गुरु जी भी एक इंच भी आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किए। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी यही है कि हम समझें कि हम शरीर नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हो, अगर हमारे गुरुजी यही बता रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम चाइनीज हैं, हम ऐसे कर कोई भी बता रहा है तो इस प्रकार से, या हम हिंदू हैं, इस प्रकार की अगर भावना रखेगा व्यक्ति तो व्यक्ति आध्यात्मिकता में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया है। क्यों नहीं किया है बताइए, क्योंकि शरीर की चेतना से वो बद्ध है। प्रभु क्यों आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाए, हाँ बिल्कुल सही बात, आप जोर जोर से बोलेंगे तो याद होगा, हम लोग शरीर की चेतना से बद्ध रहते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदू कौन है, आप हिंदू हैं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, तो उसको तो आप नहीं कह सकते, अग्नि को तो आप नहीं कह सकते हिंदू अग्नि और मुस्लिम अग्नि, आकाश को तो आप नहीं कह सकते हिंदू अगर हिंदू आकाश और मुस्लिम आकाश, तो या सूर्य को तो नहीं कह सकते कि हिंदू सूर्य मुस्लिम सूर्य, हवा को तो नहीं कह सकते, यानी इन्हीं वस्तुओं से हमारा शरीर बना, तो ये तो नहीं हो सकता, मन हिंदू नहीं हो सकता, हम केवल मान लिए हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। और उससे दिक्कत ये है कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, दोस्त मानते हैं, और फिर अपने तत्व के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में नहीं समझ पाते। समझ में आ रही बात, ओके। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। अब इसको समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये लाइन समझ में आ रही है, तथाकथित योगी हैं लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करते, उनका हृदय अशुद्ध रहता है, तो उनको कोई आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। इस पर जरा विचार कीजिए, YouTube पे हेल्थ संबंधित जितने भी वीडियो होते हैं वो बहुत पॉपुलर क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग से शरीर, हमारा शरीर फिट होता है, और उससे क्या कर पाएंगे हम, भोग कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग भले ही बोले जाए कि हम योगी हैं, लेकिन क्या वो योगी हैं? नहीं, वो भोगी हैं। उनकी जगह जितने लोग भी बोलते हैं और उन लोगों को प्रेरणा भी यही देते हैं कि आपका पेट ठीक हो जाएगा, आप रसगुल्ले खा लोगे, ये खा लोगे, वो खा लोगे, कुछ भी खा लोगे सब हजम हो जाएगा। तो यानी कि एक बात उनको हजम नहीं होती है कि हम शरीर नहीं है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन किस उद्देश्य के लिए, ये समझ में नहीं आता। जैसे आपकी कार है, मान लीजिए आप कहें कि कार को मैं ठीक रखूंगा ताकि ये खूब डीजल पिए। क्यों भाई, ये कैसा ही बात है? कार को ठीक रखना है ताकि इसका इंजन डीजल पीता रहे, ये तो कोई उद्देश्य नहीं है। कार को इसलिए हम ठीक रखते हैं, उसमें डीजल इसे डालते हैं ताकि कार से हम कहीं किसी उद्देश्य में अच्छी जगह जा सकें। उसी प्रकार से शरीर को सही रखना ठीक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन उस शरीर से हमें योगिनस चयनम करो, योगिना बनना है, भगवान से भगवान की सेवा करनी है जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो और हम भगवान को समझ सकें। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितना व्यक्ति भोगों में लगेगा उतना ही ये भावना और बढ़ जाएगी कि मैं शरीर हूं, और जितना ये भावना बढ़ेगी कि मैं शरीर हूं उतने ही हम लोग भय से ग्रसित हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जितना ये भावना हमारी बढ़ेगी कि हम लोग शरीर हैं उतना ही डर बढ़ जाएगा। इस संबंध में सोक्रेटस नाम का एक फिलोसफर था, तो वो कुछ सिद्धांत बता रहा था कि जैसे अर्थ जो पृथ्वी है वो गोल है, तो वहां के लोगों ने, राजा ने कहा, तुम ये क्यों बोल रहे हो, बाइबल में लिखा है या कुछ ग्रंथ में लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे हम। करने के बावजूद भी वो नहीं माने। तो उनको एक दिन वो बैठे हुए थे अपने रूम पे और सैनिक भेजे गए राजा के द्वारा, और उन्होंने कहा कि ये जहर है, जहर पियो। नहीं, उन्होंने उनको बोला गया कि हम आपको पकड़ने आए हैं, हम आपको मारने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा, मारने की बात तो दूर है, पहले आप मुझे पकड़ के दिखाइए। समझ में आया? रूम पे बैठे हैं, चार सैनिक आए हुए हैं, तो क्या आप उनको ये बोलेंगे कि आप मुझे पकड़ के दिखाइए? तो क्या कहना चाहते हैं? कहने का अर्थ है उनको यह अनुभव था कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। इतना साक्षात्कार था, ज्ञानी पुरुष थे। कहने, आप मुझे मारेंगे क्या? आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते, मुझे देख ही नहीं सकते। जैसे हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को दुश्मन भी मान लेते हैं और दोस्त भी मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने तो देखा ही नहीं इसको। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप कहेंगे हाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ, लेकिन वस्तुतः आप मेरे केवल शरीर को देख रहे हैं। और अद्भुत बात यह है कि हम उसमें निंदा भी चालू कर देते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, लेकिन वस्तुतः हम उसके खोखे को देख रहे हैं। खोखा समझना, एक्सटर्नल शेल, जैसे स्पीकर का ये खोखा है, एक्सटर्नल शेल है, शेल का मतलब बाहरी आवरण, केवल उसको देख रहे हैं। जैसे आप मेरे जैकेट की निंदा करें, मेरे धोती कुर्ता की निंदा करें, तो मेरी निंदा तो नहीं होती ना। इस प्रकार से हम अपनी वाणी को, जिस वाणी को भगवान की सेवा में लगा करके हम मुक्त हो सकते हैं, इन सब चीजों में लगाते हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि आसन करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि इस आसन का उद्देश्य क्या है, शरीर को ठीक रखने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये यतंतोप्य कृतात्मानः कहलाते हैं। अर्थात बहुत अच्छी बात है कि ये लोग तथाकथित योग तो कर रहे हैं, यत्न तो कर रहे हैं, लेकिन अकृतात्मानः, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, इसलिए इनका हृदय अशुद्ध रहता है। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं योग गुरु है जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन इस भावना से बाहर नहीं आए, ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन इस भावना से बाहर नहीं आए हैं कि वो भारतीय हैं और आसन करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो उस मामले में हम ठीक है, उनके हम सम्मान देते हैं कि वो आसन कर रहे हैं और शरीर को ठीक रख रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, सत्वगुणी है, लेकिन और फल भी खाते हैं केवल, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने को भी समझ पा रहे हैं कि वो है कौन। समझ में आ गई बात? यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। इस संबंध में बहुत सुंदर बात से पहले भगवान बोलते हैं, वायुर्गंधा निवाशयात। जैसे एक फूल बहुत दूर होता है और उस फूल या फूल के बगीचे से हवा जब बह के आती है तो उसकी खुशबू आपको मिलती है कि नहीं? अब आप उसको देखते हो या समझते हो कि सुगंध आपके पास कैसे आ रही है? मैं फिर से प्रश्न करूंगा, सुगंध कैसे आ रही है ये आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा समझ में आता है कि सुगंध कैसे आ रही है? समझ में आ रहा है ना? हवा उसको स्पर्श करी, हवा हवा ही रही, हवा ने उसकी सुगंध को उठाया और आपके पास लेके आ रही है। उसी प्रकार से हम इस जगत में कुछ कार्य करते हैं, उसका हमारे मन पे छाप पड़ जाती है। जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, लेकिन जो आपने कल कार्य किया होगा उसका स्मरण होता रहता है। जब आप जब करते हैं कितनी सारी बातें आती हैं, तो वो हमारे मन में छाप पड़ रहा है जिन हम कार्य को करते हैं। जैसे मैंने सुना है कि आप अपने अपना बिजनेस चेंज किया है, तो आपको जो आपका पुराना बिजनेस था वाईफाई का, उसका कभी याद नहीं आती कि आपने कैसे तार लगाए थे। आता है कि नहीं आता है? तो अब आपको क्यों आती है याद? क्योंकि आपने वो कार्य किए हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको ड्यूटी किचन में रोटी बेलने का संस्कार क्यों नहीं आता मन में? क्योंकि किया नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा मन उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां पे हमने वो कार्य किए हैं, वो हमने अनुभव किया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसी प्रकार से जो लोग भक्ति में बढ़े नहीं है, योग पद्धति में आगे बढ़े नहीं है, दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देखो भाई, ये व्यक्ति अभी गंदा काम कर रहा है, अब इसको आगे जाकर के दुर्गति प्राप्त होगी। ये बात समझ रहे हैं? जो मान लीजिए पशुओं का वध कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं भाई ये अगले आगे जाकर के जानवर बनेगा और वे जानवर उसको काटेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा। और आप उसको समझाएंगे तो क्या बोलेगा? अरे स्वर्ग नरक किसने देखा है? अब उससे पूछो कि क्या तुम नरक देखना चाहते हो? और देखने के बाद क्या अब आपको छोड़ दिया जाएगा? मान लीजिए कोई कहे कि मैंने जेल देखा, कौन देखा है जेल होती कि नहीं होती? तो क्या जेल के अंदर जाकर के क्राइम करके जेल के अंदर जाकर के देखेंगे? आप तब विश्वास करेंगे क्यों भाई? आपको विश्वास है कि जेल होती है? आपको विश्वास है कि तिहाड़ जेल है? तो बताइए, ये अच्छा है कि सुन लिया जाए कि तिहाड़ जेल है और वो बड़ी कठोर जेल है, वो बुद्धिमान है और सही से बर्ताव किया जाए, वो बुद्धिमानी है कि हम क्राइम करके पाप करके तिहाड़ जेल में जाएं और उसके बाद देखें हाँ भाई हाँ मान लिया हमने तिहाड़ जेल है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वह समझ पाते हैं किस प्रकार से कर्म का सिद्धांत चल रहा है। और उससे होगा क्या? ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि मेरे कर्मों का भविष्य में क्या प्रभाव होगा, वो अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व ले लेता है। ये बात आप समझ रहे हो? जैसे कि आज कोई कहे कि भाई भगवान की सेवा करने से, भगवान को भोग लगाने से क्या होने वाला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि किस प्रकार से अन्य लोगों को भगवान की सेवा का लाभ मिला है, और मैं भी अगर भगवान की जप करता हूं, भक्ति करता हूं, तो आगे मुझे भी लाभ प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। यानी कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पहली बात तो अपनी स्थिति को समझते हैं भगवत गीता को सुन करके कि वो श्री कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा में लगते हैं, और इसके और साथ साथ वो इस जगत को कृष्ण के दिए गए ज्ञान के अनुसार समझते हैं। और अन्यथा जो लोग कृष्ण की सेवा नहीं करते वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ पाए होंगे। कोई प्रश्न है? स्टॉप।